أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں. اسی طرح یہ راتیں جو درپیش ہیں ہمارے، یعنی لیلت القدر کی راتیں، انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی طرح اور دیگر ان ہستیوں کی طرح جن کا ابھی میں آپ کے سامنے نام لینے والا ہوں، جن کو بکاؤن کہا جاتا ہے، بہت زیادہ گریہ کرنے والے اور توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ عمیق اور کوالٹی کی توبہ کی محفلیں برپا کرنے والے، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راتوں میں اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی ہیں اپنے وجود میں توبہ کی ان شعلور محفلوں کو برپا کر سکیں، تاکہ ان توبہ کی شعلوں سے جہنم کے شعلوں کو ہم بجھا سکیں انشاءاللہ. الحمدللہ آدم علیہ السلام اور ان کی جو توبہ تھی اس کے بارے میں ہم نے کئی سیشن سے بات چیت ہو رہی تھی، اور آج کا سیشن آخری ہوگا اس موضوع کے اوپر، یعنی توبہ کے حوالے سے. اب بعض ہستیاں ایسی ہیں اس عالم کے اندر جن کو بکاؤن کہا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ گریہ کرنے والے. ان کا نام آیا ہے احادیث کے اندر، میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. حدیث طولانی ہے، اس کو غور سے سنیں، بہت ہی طولانی بھی ہے اور بابرکت حدیث بھی ہے. دیکھیں یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ البکاؤن خمسۃن، بکاؤن پانچ ہیں، پانچ ہستیاں ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے گریہ کیا ہے. آدم و یعقوب و یوسف و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی بن الحسین علیہ السلام. یہ پانچ ہستیاں، پھر اب ایک ایک ہستی کے بارے میں ایک بریف اکاؤنٹ دے رہے ہیں امام معصوم علیہ السلام. فَأَمَّا آدَمُ فَبَكَى عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَ فِي خَدَّيْهِ الْأَمْثَالُ الْأَدْوِيَةِ. آدم نے جنت کے فراغ میں، آدم نے کیوں گریہ کیا، آدم نے کس وجہ سے اس قدر بکاؤن میں وہ شمار ہونے لگے، جنت کے فراق میں جب حبوت کا پیام آیا، پیغام آیا خداوند متعال کی جانب سے، یعنی پیغام سے مراد حبوت کا حکم آیا، تو آدم کو اس جنت سے نکالا گیا جس میں وہ مقام قرب الہی پر فائز تھے. جب وہاں سے نکلے اور جنت سے فراق ہوا تو اس فراق کے نتیجے میں اس قدر گریہ کیا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہے کہ ان کے گالوں پر گویا پانی کے آنے جانے کے دو راستے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، بن گئے ہیں یہ راستے. وَأَمَّا يَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام، فَبَكَى عَلَى يُوسُفَ، انہوں نے یوسف پر گریہ کیا، حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهُ وَحَتَّى قِيلَ لَهُ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرْظًا حتی تکون حرزن او تکون من الہالکین. اور یعقوب نے یوسف پر اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہاں تک کہ انہیں کہا گیا، خدا کی قسم اگر یوسف کی یاد اپنے دل سے تم نے نہ نکالی تو اس یاد سے تم درماندہ ہو جاؤ گے یا نابود ہو جاؤ گے. بس اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بکاؤن میں سے شمار ہوتے ہیں. واما یوسف تیسرے تیسری شخصیت اور ہستی جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہے وہ خود ہے حضرت یوسف علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے، فبکا علی یعقوب، انہوں نے یعقوب پر شدید گریہ کیا، حتی تعذى به اہل السجن، یہاں تک کہ جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، زلیخا نے ان کو جیل میں بھیجا تھا اور کئی سال تک وہیں پر تھے، تو وہاں پر اس قدر یعقوب علیہ السلام کے فراق میں گریہ کرتے تھے کہ زندانیوں کو تکلیف ہونے لگی، اذیت پہنچنے لگی، ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ تم کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو. فقالوا، اب زندانیوں نے یوسف سے کہا، فقالوا له اما ان تبكي الليل وتسكت بالنهار واما ان تبكي النهار وتسكت بالليل، زندانیوں نے کہا کہ بھائی اے یوسف، یا دن کو گریہ کرو اور رات کو سکون سے رہو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، یا رات کو گریہ کرو اور دن کو سکون سے رہو. نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ فصالحهم على واحدة منهما، نتیجے میں ان دو میں سے یوسف علیہ السلام نے انتخاب کیا، کسی ایک ٹائم کو انہوں نے انتخاب کیا اور اس ٹائم میں وہ گریہ کرتے تھے. اور اس کے بعد وَأَمَّا فاطمہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فبکت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کرتی تھی اس قدر کہ حتی تعذى به اہل المدینہ، یہاں تک کہ اہل مدینہ کو اذیت پہنچتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. فقالوا لها، اب اہل مدینہ نے، مدینہ کے لوگوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا، قد آذیتنا بکثرت بقائک، کہا تمہارے اس قدر گریہ کرنے سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے. فکانت تخرج الى المقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تنقضي حاجتها ثم تنصرف، پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مزار شہداء پر جا کر جاتی تھی، وہاں گریہ کرتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی. اب آپ دیکھیں یہ بکاؤن چہارم، آخری بکاؤن یعنی خود علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کہ فبکا علی الحسین 20 سنة او 40 سنة، اور علی ابن حسین علیہ السلام کے 20 یا 40 سال امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا انہوں نے. ما وضع بین یدیہ طعام الا بکا، صحیح، اور کوئی غذا ان کے سامنے رکھی نہیں جاتی تھی مگر یہ کہ اس غذا کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کرتے تھے. یہاں تک کہ امام کے خادم نے ان سے کہا کہ جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، ابن رسول اللہ انی اخاف علیک ان تکون من الجاہلین. قال، پھر امام نے جواب میں فرمایا کہ انما اشکو، خادم کے جملے یہ تھے، خادم کی بات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول خدا کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ آپ نابود ہو جائیں گے اس گریہ سے. پھر امام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں اپنے درد دل اور اندوہ کو اور غم کو خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، اور مجھے خدا سے ایسی چیزوں کا علم ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ اس روایت میں ان پانچ ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ اس عالم میں رونے والے شمار کیے جاتے ہیں، بکاؤن میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے بکاؤن کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، کہ انہوں نے اس جنت کی فراق کی خاطر جو ہے وہ یہ اس قدر انہوں نے گریہ کیا. کہ ہم انشاءاللہ پھر اس گریہ کے اوپر آئیں گے جب ہم آئیں گے حضرت آدم اور حوا سلام اللہ अलैहिमा के उस मुलाकात के हवाले से, जो उनकी मीटिंग हुई, सबसे पहली मुलाकात इन दो हस्तियों की हुई, और वहां पर हम इसके ऊपर मजीद आएंगे, इस टॉपिक पे उन्होंने जो गिरिया किया और जो अहादीस में नकल किया गया है। यहाँ पर एक वाकया, एक बहुत ही अच्छा कॉल है मरहूम सैयद मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई रहमतुल्ला अलैह, जो के अल्लामा तबातबाई साहिब तफसीर अल मीज़ान के भाई हैं, बड़े भाई थे, और इन्होंने अल्लामा तबातबाई से ये बात फरमाई कि जो तौबा हमें अपनी इबादतों से करना चाहिए। सही है, हम तो नॉर्मल ये समझते हैं ना कि तौबा तो गुनाहों से होता है, लेकिन खुद मरहूम क्या फरमा रहे हैं कि जो तौबा हमें अपनी इबादतों से करनी चाहिए, किसी और अमल पर इतनी शदीद तौबा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इबादत की किसी शर्त की रियायत नहीं करते। ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने मुसल्ले के ऊपर जब हम खड़े होते हैं और नमाज शुरू करते हैं, नमाज का इख्तिताम करते हैं, रोजा का आगाज करते हैं, उसका इख्तिताम करते हैं, और दीगर इबादतें जो हम अंजाम देते हैं, क्या हम वाकया इबादत की तमाम शुरूत को, तमाम कंडीशंस को पूरा करते हैं? क्या इनकी रियायत करते हैं? नहीं करते हैं। फिर फरमाते कि ये इबादत जो कि एक मलकूती अमल था, इबादत जो कि एक मलकूती अमल था, जो मेरे नसीब हुआ था, मैंने जाया कर दिया, उसकी शराइत और कंडीशंस की रियायत किए बगैर मैंने उस इबादत को जाया कर दिया, उस मलकूती अमल को, वो मलकूती अमल जो मेरी जिंदगी को भी मलकूती बना सकता है। आप खुद देखें ना, अगर हमारी इबादतें खुदा के सामने पेश की जाएं तो हम तो शायद वहीं पर रुसवा हो जाएंगे। हमारी इबादतों की क्या कैफियत है, क्या क्वालिटी है हमारी इबादत के अंदर? ऐसी कोई चीज है जो हमारी हमारी इबादत के अंदर जो खुदावंद मुताल को राजी कर सके? नहीं। इस वजह से उलमा फरमाते हैं कि तौबा जरूरी है, इन इबादतों से तौबा जरूरी है। अब आदम अलैहिस्सलाम की वो अजीम मजलिस, कौन सी मजलिस? तौबा की मजलिस, तौबा की महफिल, अजीम मजलिस थी, कि कुरान मजीद ने इस महफिल को नकल किया है, और इस आयत में सूरह आराफ की आयत नंबर 23 में, कि इस जुमले में जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा के ये जो जुमले अदा फरमाए हैं, वाकई बहुत ज्यादा नुकात है यहां पर। देखें सूरह आराफ नंबर 23 में आया, फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। ये आदम और हव्वा दोनों अपने रब से परवरदिगार जो है मुखातब है। देखें इसी वजह से रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, और अगर तूने हमें माफ नहीं किया, हमारी मग़फ़िरत नहीं की, व तरहमना, और अगर हम पर रहमत नाजिल नहीं की, लनकूनन्ना मिनल खासरीन, तो बेशक, देखें लनकूनन्ना आया है, यानी यहां पर इस एक लफ्ज के अंदर दो से तीन ताकीदात यहां पर इस्तेमाल की। एक तो लाम आया यहां पर जो खुद ताकीद के लिए और उस शदीद एहसास को जो है वो मुंतकिल कर रहा है, यानी वो एहसास जो हजरत आदम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा के अंदर मौजूद है, पशेमानी और निदामत का शदीद एहसास, वो लनकूनन्ना से हमें पता चल रहा है कि ए खुदाया, ए हमारे परवरदिगार, अगर तूने हमारी हमारी मगफिरत नहीं की और हम पर रहम नहीं किया, तो यकीनन व बेशक हम खासिरीन में से शुमार होंगे। अब सबसे पहला नुक्ता यहां पर खुद ये लफ्ज रब्बना है, खुद लफ्ज रब्बना है जो किस चीज पर हमें रहनुमाई कर रहा है, किस चीज को हम तक पहुंचा रहा है। ये लफ्ज रब्बना यानी खुदा की रुबूबियत से मुत्तसिल होना, आदम अलैहिस्सलाम और بی بی حوا سلام اللہ علیہ خدا کی ربوبیت سے یہاں پر متصل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ربوبیت خدا کا کام کیا ہے؟ ربوبیت خداوند متعال کا کام یہ کہ انسان کے تمام نقائص کو جبران کر دیتی ہے. یہ اس چیز کی خاصیت ہے, یہ رب بولنے کی خاصیت ہے, یہ ربوبیت سے متصل ہونے کی خاصیت ہے کہ میرے اور آپ کے اندر جو نقائص ہیں وہ ربنا کہنے سے جبران ہو جاتے ہیں. البتہ ربنا جو عملی ربنا ہو, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ربنا کا دوسرا کام کیا ہے؟ ربنا کا دوسرا کام یہ کہ انسان کی تمام حاجات کو اجابت کرتی ہے. اب حاجات سے مراد فقط یہ نہیں آئے میرے اور آپ کے ذہن میں کہ حاجات فقط یہ کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. صحیح ہے, حاجات کی لیولز ہیں یہاں پر. یہاں پر آپ مجھے بتائیں, حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما, ان کی کیا حاجات ہیں یہاں پر؟ ان کی کیا حاجت ہے؟ وہ یونیک حاجت, ان کی حاجت یہ ہے کہ خدایا ہمیں وہ مقام و منزلت قرب دوبارہ عطا فرما. آپ دیکھیں ان کی حاجت کا لیول کتنا اوج پر ہے. صحیح, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حاجتوں کے لیولز کو آہستہ آہستہ بڑھائیں, آہستہ آہستہ بڑھائیں. مادی حاجتیں بھی ہوں, صحیح ہے, وہ بھی خدا سے مانگے, لیکن ساتھ ساتھ معنوی حاجتیں بھی ہوں, وجودی حاجتیں بھی ہوں. اپنے وجود کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ بھی ہماری حاجات میں شمار ہونی چاہیے. صحیح, ربنا کیا ہے؟ ربنا یعنی اے وہ حقیقت. دیکھیں صحیح, اب ربنا کا ایک اور ہم یہ بھی وہ کر سکتے ہیں مانا کہ اے وہ حقیقت جو جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا, تو یہ جملے ہمارے ذہن میں ہے کہ اے وہ حقیقت جو ہمارے سارے نقائص کو تیرے ساتھ مرتبط ہو کر جبران کر دیتی ہے, کمپنسیٹ کر دیتی ہے. بس یہ ہو گیا ربنا کا معنی. اچھا, آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خدایا دیکھیں, خدایا مجھے یہ دیکھیں. آدم علیہ السلام نے, اب میں کیسے سمجھاؤں یہاں پر, خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر میرے پاس یہاں پر عبادت آ جائے, ٹھیک ہے, دیکھیں آدم کی عبادت یوں ہے, اگر ہم اس کو یوں انٹرپریٹ کریں تو بہتر ہوگا. علماء کی جو ہے وہ مدد سے, علماء فرماتے کہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا خدایا ہم پر رحم کر. آپ دیکھیں آیت میں تو ایسا نہیں ہے نا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا صحیح وترحمنا. اگرچہ یوں آیا ہے, آدم کے جملے کیا ہیں؟ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, یہ کہا آدم نے, یہ نہیں کہا کہ خدایا ہم پر رحم کر. صحیح ہے, یعنی یہ کہا آدم علیہ السلام نے, بلکہ یہ کہا کہ خدایا اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا. دیکھیں یہ نہیں کا لفظ آ رہا ہے آدم علیہ السلام کی اس دعا میں, خدایا اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا, اگر تو ہم پر رحمت نہیں کرے گا, رحم نہیں کرے گا, تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ صحیح ہے, ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام, یعنی اپنی بیچارگی کہ میرے پاس اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو فقیر اندر فقیر ہوں. میں بھی لے کے آؤں گا وہ عبارت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے, بہت ہی خوبصورت ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خداوند متعال کی نسبت, کیا ادب بجا رہا ہے حضرت موسیٰ نے, اور وہی ادب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بجا لا رہے ہیں. خدایا میں فقیر ہوں, میں بیچارہ ہوں, میرے پاس یہ جو اسباب ہیں, یہ جو ٹولز اینڈ ریسورسز جو مجھے اپنے اطراف میں نظر آ رہے ہیں, یہ تو خود تیرے بنائے ہوئے ریسورسز ہیں. صحیح, تو چاہے تو ان ریسورسز کو آج ہی مجھ سے چھین لے. صحیح, یہ تو میری مدد کو نہیں پہنچیں گے, وہ مدد کو پہنچ سکتا ہے جو ان کا خالق ہے, اور خالق ان کا تو ہی ہے خدایا. صرف تو ہے, اور صرف تو ہے, تیرا وجود ہے, صرف تیری بارگاہ میں ہم پناہ لے سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر حضرت آدم اپنی بیچارگی, اپنے فقیر کو अपने फकर को, अपने एहतियाज को, अपने मोहताज होने को बता रहे हैं कि खुदाए मैंने जुल्म किया है अपने आप पर, मासीयत की है, मैं गफलत का शिकार हुआ हूं। बस ये सब बयान करना अपनी हाजतों में बहुत मुअसर है। देखें, ये अदब अंबिया का हमें अपनी दुआओं के अंदर जो जुमले इस्तेमाल करने चाहिए, जो अदब बजा लाना चाहिए खुदा की बारगाह में मुसल्ले के ऊपर, वो इन हस्तियों से हम सीखें। वरना क्यों खुदावंद ने मुताल इनकी दुआएं कुरान में नाजिल कर रहा है? फकत इनकी बेचारगी दिखाने के लिए, फकत इनका फकर दिखाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि भाई, ए इंसान नाकिस, मैं और आप जो नाकिस हैं इस वक्त और जो कमाल की तरफ जाना चाहते हैं, अगर हमें अपने फकर को बरतरफ करना है, सही उसका तरीकेकार यह है कि हम उन जुमलों को अपने जबान पर जारी करें जो इन हस्तियों ने खुदा की बारगाह में, इन इंसान कामिल शख्सियात ने खुदा की बारगाह में जो है वो अदब बजा लाए। खुद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सहीफ़ा सज्जादिया इसका बेहतरीन नमूना है। बस ये सब इस तरह की जुमले अदा करना और इस पर यकीन रखना, देखें फकत अदा करना तो नहीं है, यकीन करना कि हम फकीर हैं, फकीर अंदर फकीर हैं। जितना हमारा अकाउंट का बैंक बैलेंस, वॉट एवर जो कुछ हो, वो एक सही है, वो हमारे फकर को बरतरफ नहीं करता, वो हमारे मोहताजपन को बरतरफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बैंक बैलेंस भी खुदा की जानिब से था। वो खुदा चाहे तो आज ही वो बैंक बैलेंस हमसे ले ले, बस हम और आप जो है वो दाइमी तौर पर लम्हा बिलम्हा जो है वो फकीर अंदर फकीर है। बस अगर हम चाहते हैं अपनी हाजतों का जिक्र करें, तो यहां पर हाजतों के साथ साथ अपने फकर का ज्यादा जिक्र करें। सही है, इसकी दलील क्या है उस इबादत में मैं लेके आऊंगा जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से जो दुआ बयान की। देखें, यहां पर एक और नुक्ता हमें बहुत ही खूबसूरत इस फकर से, इस बेचारगी से हमें मिलता है। वो क्या है कि खुदाया ये असबाब हमारी क्या मेंटेलिटी है। आप मुझे देखें, जब कोई मुश्किल आती है सही, तो हमारी मेंटेलिटी देखें इतनी बेखुदाई और गैर खुदाई मेंटेलिटी है। वो ये कि जब कोई मुश्किल हमारे सामने आती है इस जिंदगी के अंदर, तो हम फौरन असबाब के पास जाते हैं। असबाब यानी टूल्स, रिसोर्सेस, सोर्सेस। सही है, मसलन मैं इसकी बेहतरीन मिसाल पानी है। जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, फौरन जहन कहाँ जाता है? हमारा जहन फौरन ग्लास की तरफ जाता है, हमारा जहन फौरन जग की जानिब जाता है। सही है, जग और ग्लास, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस हमारे जहन में चलता है। जैसे प्यास लगती है, फौरन मेरे और आपके अंदर हरकत पैदा होती है, हम अपनी सीट से जो है जगह से खड़े होते हैं, जाते हैं किचन की जानिब और ग्लास और जग लेते हैं और पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। ये क्या था, ये प्रोसेस क्या था इसका? ये यानी असबाब की तरफ निगाह करना। क्यों मेरे जहन में जब पानी और प्यास और तिश्नगी मुझे एहसास होने लगी, क्यों तिश्नगी के इस एहसास के बाद मेरा जहन ग्लास और जग की तरफ गया? क्यों क्यों इन असबाब की तरफ गया? क्यों खुदावंद मुताल की तरफ मेरा और आपका जहन नहीं जाता कि खुदा है जो हमारी प्यास को बुझाता है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम असबाब को, इन टूल्स को खुदा से मुस्तकिल देखते हैं कि ये असबाब अपनी जगह है और खुदा अपनी जगह है। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। अक्सर औकात हमारे साथ यही होता है, हम टूल्स को जो है मुस्तकिल देखते हैं। मुस्तकिल, हम इस्तिकलाल के कायल हैं। इस्तिकलाल यानी ये टूल्स, ये जग पानी का खुदा से मुस्तकिल है। सही है, ये बड़ा खतरनाक है। इसी वजह से जब हमारी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही होती, तो हम फौरन जो है वो किस तरह हमारा लहजा होता है खुदा की जानिब। अगर खुदा होता तो बाज़ अगर ये भी होता, क्यों? क्योंकि उस दिन फरमाया था कि जब इंसान को, इंसान गुनाहों का शिकार होता है और वो सारे रिक्वायरमेंट्स जो उसके एतकादात के अंदर होने चाहिए अगर वो ना हो, तो आहिस्ता 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 शैतान ऐसा काम करता है उसके साथ कि अकाइद उसके मुतजलजल हो जाते हैं। सही है, अगर हमारी कोई हाजत पूरी नहीं होती और चूंकि हम असबाब को मुस्तकिल अस खुदावंद मुताल देखते तो इस तरह रिएक्ट करते हैं कि जैसे रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो कोई खाना ऑर्डर किया है, वेटर ने कहा कि भाई 15 मिनट में खाना आ जाएगा, 15 मिनट से जैसे ऊपर होता है खाना नहीं है तो हम फौरन चिल्लाने लगते हैं कि भाई हमारा खाना किधर है। हमारा बर्ताव हमारा रवैया खुदा की जानिब अनफॉर्चुनेटली इसी तरह होता है। सही है, अक्सर का ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं कि सबका, लेकिन अक्सर जो देखने में मिलता है वो यही है कि भाई मेरा खाना क्यों नहीं आया, मैंने कहा था मेरे पैसे मुझे कल मिलने चाहिए, क्यों नहीं आए खुदा मेरे पैसे कहाँ हैं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तरीकेकार ये नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम का तरीकेकार एक वली खुदा का तरबियती तरीकेकार है। देखें बहुत ही अहम जुमला ही है, आदम अलैहिस्सलाम वली खुदा है, वली खुदा जो खुद एक इस मुश्किल में पड़ चुके हैं, किस तरह वो खुदा की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन, के ए बंदगान खुदा। आदम अलैहिस्सलाम हमें यहां पर तालीम भी दे रहे हैं, क्यों, वली खुदा का एक काम तालीम भी देना है अपने बंदगान को। आदम, हम बनी आदम को यहां तालीम दे रहे हैं कि अगर दुआ करनी तो इस तरह करनी है। ये वो तरबियती नुक्ता है, मैंने कहा ना अंबिया की तरबियती सीरत एक अहम मौजू है, उसमें से एक तरबियती नुक्ता यह है कि आदाब दुआ क्या है, दुआ करने का अदब क्या है। अच्छा, वो वली खुदा, ऐसा वली खुदा जो कि इंसान कामिल है, खलीफा खुदा है, और अगर आपको याद हो मैंने हजरत ईसा अला नबी नवारी वाले सलाम के बारे में ये कहा था कि अल्लामा तबा तबाई रहमतुल्ला अलैह की अलमीजान से कि हम जब दुआ करते हैं तो दुआ के अंदर जितना हमारा यकीन होता है उसी हद तक हमारी दुआ होती है। मिसाल भी दी थी कि अगर हमारे सामने कोई बीमार हो तो फौरन दुआ करते कि खुदा इसको शिफा अता फरमा, क्यों, क्योंकि हमें यकीन है कि खुदावंद मुताल उसे शिफा अता फरमाएगा। लेकिन अगर हमारे सामने एक मुर्दा लाश हो तो क्या हम दुआ करेंगे कि खुदा इसे जिंदा कर दे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा यकीन उस हद तक नहीं पहुंचा हुआ है। अगरचे खुदावंद मुताल कादिर मुतलक है, अगर हम उस यकीन के साथ दुआ करें और खुदा ने अगर मसलिहत जानी तो खुदा उसे जिंदा कर देगा। सही है, यहां पर वो नुक्ता फरमाया था इस उस टॉपिक में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मुर्दों को जिंदा करते थे वो खुद नहीं करते थे, वो दुआ करते थे, उनका यकीन उस औच पे था, उस लेवल पे था, उस लेवल ऑफ यकीन के साथ जब वो दुआ करते थे तो बेइज्ने इलाही वो मुर्दा जिंदा हो जाता था। वरना हजरत ईसा अपनी काबिलियत नहीं देखते कि मेरे अंदर कोई काबिलियत है, मेरे अंदर कोई खास बात है जिसकी वजह से जब मैं दुआ करता हूं तो वो जिंदा हो जाता है। नहीं, एक वली खुदा, एक नबी खुदा कभी भी इस तरह अपने आप को नहीं देखता, वो अपने काबिलियत को हीच समझता है, जीरो समझता है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। यहां पर आदम अलैहिस्सलाम इसी चीज का इजहार कर रहे हैं, ए खुदाया मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये अदब देखें, ये अदब, अगर इस अदब के साथ आप खुदा की बारगाह में आए तो देखें क्या मोजजात बरपा होते हैं। खुदाया अगर तूने माफ नहीं किया और अगर तू हम पर अपनी रहमत हमारे शामिल हाल नहीं करेगा तो मेरे पास तो और कोई रास्ता नहीं है। खुदाया लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम खुसरान और खासिरीन में से शुमार होंगे। सही है, वी हैव नो अदर वे, देर आर नो टू वे, एक ही रास्ता है वो है खुदा, खुदा की बारगाह के अलावा और कोई बारगाह नहीं है। तो बस देखें ये बेचारगी और फकर हजरत आदम सलामुल्लाह अलैह इस महफिल आतशीन तौबा में जो है यहां पर बयान कर रहे हैं। अब यहां पर एक और टॉपिक, सब टॉपिक रहता है वो ये कि तौबा के लेवल्स क्या हैं, तौबा के मरातिब क्या हैं। देखें तौबा के लो लेवल्स भी हैं, मीडियम लेवल्स भी हैं, हाई लेवल्स भी हैं। सही है, अगर इंसान, अगरचे मैं और आप उस तौबा हकीकी तक पहुंचने के लिए बहुत तूलानी सफर दरकार है मुझे और आपको, अगर वाकया तौबा हकीकी करना चाहते हैं, सही है, जो शायद उलमा और आलिम रब्बानी और औलिया खुदा को नसीब होता है, वो उस मकाम पर पहुंचते हैं। लेकिन तौबा के जो अव्वलीन मरातब है, जो शुरू के जो मरातब है, उस तक पहुंचना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है। तौबा के यहां पर तीन मराहिल जिक्र करते हैं उलमा, सही है, ये आप ये समझे बिगिनर्स लेवल, सही है, जिसे बिगिनर्स गेम्स में होता है, बिगिनर्स लेवल, मीडियम लेवल और सही है एक्सपर्टीज लेवल जो होते हैं, ये बिगिनर, मैं और आप जो कि बिगिनर्स हैं इस इंसान कामिल के सफर में, हमारे लिए ये तीन लेवल्स यहां पर बयान फरमाते हैं कि सबसे पहला लेवल निदामत है, पशेमानी है, सही, जब इंसान गुनाह करता है तो उसको पशेमानी होनी चाहिए। और ये इत्तफाकन उलमा एक बहुत ही जालिब बात फरमाते हैं कि ये जो निदामत है तौबा को, जो सबसे पहला मरतबा निदामत, ये इत्तफाकन तौबा के बिगिनर्स लेवल का भी पहला मरहला है और तौबा के आली तरीन मरातिब का भी पहला मरतबा है, जो आली तरीन तौबा के उस दर्जात पर फाइज हैं, आली तरीन तौबा को बजा लाते हैं, उनके लिए भी पहला मरहला क्या है, निदामत और पशेमानी। अलबत्ता पशेमानी फकत लफ्जी नहीं होनी चाहिए, खुदाया मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सही है, तो ये लफ्जी, अलबत्ता उलमा ये भी फरमाते हैं कि लफ्जी हो ये अच्छी बात है, ठीक है, कम से कम लफ्ज और जबान पर तो आ चुका है, अब लफ्ज और जबान के साथ साथ अब अमल में भी आ जाए, प्रैक्टिकल भी हम अपने वजूद से वो निदामत और पशेमानी का इजहार करें। क्या वो ये कि हम अपने अंदर शर्म का एहसास करें, सही है, वो वाकई जो हकीकी शर्म है वो हमारे अंदर अगर आ जाए तो ये हकीकी पशेमानी, हकीकी निदामत होगी। इसी वजह से उलमा यहां पर फरमाते कि जब ये हो जाए और गुनाह का माइक्रोब जब खुदा ना खासा इंसान के अंदर वारिद हो जाए, तो यहां पर तो निजाम रूही का, डिफेंसिव सिस्टम ऑफ द रूह का काम ये कि उसको फौरन जो है वो अब उसकी सिस्टम से निकाले, उस सोल से निकाले, रूह से निकाले और फिर फौरन तौबा करें। सही, निकालने का तरीका यही तौबा है, फिक में भी यही है, इल्म फिक में जो उलमा फतवा देते हैं, फुकहा और मुज्तहिदीन फतवा देते हैं, वो ये कि इंसान जब गुनाह अंजाम देता है तो वाजिबात के अंदर एक वाजिब ये है, वाजिबात में से एक वाजिब ये है कि इंसान जब गुनाह अंजाम दे तो फौरन तौबा करे, ये वाजिब फौरी में से है, सही है, बाज वाजिब ऐसे होते हैं जो फौरी नहीं अंजाम इंसान दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाज वाजिब फौरी होते हैं, फौरन उसे अंजाम दे, उसमें से एक क्या है तौबा, ये खुद मुज्तहिदीन का फतवा है, सही है। अब यहां पर एक हदीस में भी है कि गालिबन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अक्सरु अक्सरु हाँ अक्सरु अहले नार सियाहुम मिन तस्वीफ, अहले दोजख की सबसे ज्यादा फरियाद आज और कल करने की वजह से, सही है, होता है ना इंसान जब गुनाह अंजाम देता है तो वो क्या कहता है, यार कल तौबा कर लूंगा, बाद में कर लूंगा तौबा, नबी अकरम फरमाने के अहले दोजख और जहन्नम की सबसे ज्यादा फरियाद आज और कल करने की वजह से है, कल करेंगे भाई, सही, कल पे टाल देंगे अपने कामों को, तौबा को भी कल पे टाल देंगे, या कल कर लेंगे तौबा, बहुत जिंदगी बची है हमारे पास, टुमारो नेवर कम्स, ये पहला मरहला। दूसरा मरहला क्या है, हुकूक के मर्दों लोगों के हुकूक को अदा करना, ये बिल इत्तिफाक तमाम उलमा और उरफा का कहना है कि अगर इंसान चाहता है उसकी तौबा 100% कबूल हो, उसको चाहिए कि फौरन जो हुकूक लोगों के उसके गर्दन पर मौजूद है इस वक्त, चाहे वो फाइनेंशियल हुकूक हो, चाहे मसलन अखलाकी हुकूक हो, किसी को नाराज किया है उसकी नाराजगी दूर करें, किसी के ऊपर कर्जा है, ड्यू है, अपने ड्यूज को अदा करें, सही है, ये सारे हुकूक, हुकूक नास व हुकूक इबाद अदा करना फौरन जरूरी है, सही है, क्योंकि उलमा फरमाते हैं यहां पर कि बाज़ औकात देखे इंपॉर्टेंट है, बाज़ औकात इंसान का एक या इंसान के जो 20 साल आमाल हसना होते हैं वो नतीजे तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हुकूकुल इबाद अदा नहीं हुआ। अगर इंसान ने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल नास को अदा कर दिया तो क्या पता वो 20 साल आमाल के नताइज फौरन मुहक्कक हो जाएं, फौरन अपना नतीजा दे दे, फकत वो अपने ड्यूज को अदा करने से। ये दूसरा मरहला। तीसरा मरहला हक्कुल्लाह। पहले क्या था? हक्कुन्नास, अब हक्कुल्लाह। हक्कुल्लाह क्या है? या हुकूकुल्लाह, मसलन वाजिबात जो मेरे ऊपर आपके ऊपर मसलन कजा की सूरत में बाकी हैं उन कजा को फौरन बजा लें। सही, वाजिब क्या है? कभी हमने सोचा कि वाजिब क्या है? वाजिब की डेफिनेशन क्या है? फिक के तौर पर तो हमें मालूम है इल्म फिक के अंदर के वाजिब ये है कि जिसे ठीक है खुदावंद ने मुताल ने वाजिब करार दिया है, सही है, अगर उसको अंजाम ना दे तो गुनाह शुमार होगा, ठीक है। लेकिन हम अगर अपने उस इंसान शनासी की रूह से देखें कि वाजिब क्या है, तो वाजिब वो चीज है जो इंसान के वजूद की बेसिक नेसेसिटी है। वाजिब क्या है? इंसान के वजूद की जरूरत, पहली जरूरत, सही है, मेरे और आपकी पहली जरूरत ये होता है वाजिब। इसी वजह से खुदावंद मुताल ने बास चीजों को वाजिब करार दिया है। नमाज, नमाज खमसा वाजिब है, रोजा माहे रमजान वाजिब है, खुम्स वाजिब है। क्यों? ये हमारे वजूद की जरूरत है। और इसी वजह से खुदावंद मुताल के ये रहमत रहीमियत का एक लुत्फ है, ये खुदा की रहमत रहीमियत का तकाजा है कि खुदावंद मुताल ने वाजिबात की कजा रखी है। क्यों? क्योंकि वाजिबात मैंने क्या कहा, वजूद की जरूरत है। अगर मुझसे कोई वाजिब छूट जाता है और कजा के मरहले में दाखिल हो जाता हूं तो खुदावंद मुताल ने यह कजा इसी वजह से रखी है ताकि मैं उस वजूद की जरूरत को जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया इस कजा को अंजाम देने से मैं उसका जुबरान कर सकता हूं और वो जरूरत के मैं शामिल हाल हो सकता हूं। सही, तो देखिए ये खूबसूरत निजाम खुदावंद मुताल है। अब आप देखिए यहां से एक अजीब नतीजा नहीं निकालते आप कि इल्मे फिक, इल्मे अखलाक और दीगर, अब यहां तो हम इल्मे अखलाक और इल्मे इरफान की बातें आपके सामने कर रहे हैं, सही है, इंसान शनासी, इल्मे फलसफा भी यहां इस घेर होते हैं। ये जितने भी सेशंस आपके सामने पेश किए हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से और इंसान शनासी के हवाले से, आप खुद बताएं यहां पर कितने उलूम आपस में कनेक्टेड है अभी तक इन तमाम सेशंस के अंदर, सही है। अब आपने आपके खुद देख लिया यहां पर हमने वाजिब की किस तरह डेफिनेशन की फिक के हवाले से, और यही वाजिब, सही है, जिसे हम फकत फिकही तौर पर देखते हैं किस तरह अखलाकी तौर पर ये कनेक्टेड हो जाता है। यानी यहां पर हमारे सामने इल्मे फिक इन तमाम सेशंस के अंदर ओवरऑल एक कंक्लूजन ले सकते हैं, इल्मे फिक, इल्मे तारीख, इल्मे फलसफा, इल्मे इरफान, इल्मे अखलाक, ये तमाम उलूम और इल्मे कलाम यानी इल्मे अकायद, ये 6 उलूम आपस में कनेक्टेड होकर इन मतालिब को जो है वो पेश किए जा रहे हैं, ये मतालिब को बना रहे हैं और इन मतालिब इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्टेड कर रहे हैं। बस अगर हम ये सोचते हैं कि फिक और है, तारीख और है नहीं, फिक और है, फलसफा और है नहीं, ये सब उलूम के जो उलमा हौजे के अंदर पढ़ते हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है, सही है। काश मुझे मौका मिले कि मैं आपको बताऊं कि इन उलूम का नतीजा क्या होता है और इन उलूम को हासिल करने का की अहमियत क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों एक इंसान जाए हौजे में और इल्म फिक को हासिल करे, इल्म फलसफा को हासिल करे और इल्म इरफान को हासिल करे और इल्म हिकमत को हासिल करे और इल्म अखलाक को हासिल करे और उसको सीखे और आए अपने माशरे में और अपने माशरे में आसान फहम जबान में तबलीग करें उसकी। क्यों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ये कभी किसी और फुर्सत में इंशाल्लाह। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह तौबा के मरातिब कंप्लीट हो गए। लास्ट, अब टाइम भी हमारे पास ज्यादा नहीं है, अब 2 मौजूआत रहते थे। अब आप मुझे बताएं कि क्या इन मौजूआत को छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सही, मैं उस मौजू को बयान कर देता हूं जो हमने इसी सेशन में, मैंने कहा था कि इसके ऊपर आऊंगा मैं, वो ये कि हम असबाब को मुस्तकिल देखते हैं। सही है, खुदा और असबाब एंड टूल्स एंड रिसोर्सेस, और इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और ये सेशन, ये सब टॉपिक भी यहां पर इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, और कल से हम आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ऊपर आएंगे और इनके टॉपिक को बयान करेंगे अहादीस की रूह से। देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे थे, खुदा के अब्द थे, अपने आप को मुस्तकिल नहीं देखते थे। कैसे? दलील, फौरन दलील के बारे में आप पूछें। जो मैं आपके सामने बात करूं किसी तालिब इल्म से, किसी आलिम से, या किसी और टीचर से, उस्ताद से, आप कोई बात सुने, आप फौरन पूछें, उस्ताद दलील दलील क्या है आपके पास? सही, इत्तेफाकन खुदावंद मुताल ने खूबसूरती के साथ इस सिफत को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफत को सूरह शुआरा में आयत नंबर 78 से लेकर 80 तक यहां पर बयान फरमाया। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, असबाब को किस तरह मुस्तकिल देखना होता है, दोबारा बता दूं, यानी ये जो मैंने पानी पिया है, ये मैंने नहीं पिया है, खुदा ने मुझे पिलाया है। ये जो जग और गिलास जो मेरे किचन में पड़ा हुआ है, ये मैंने नहीं खरीदा है, ये खुदा ने मुझे दिलाया है। सही, इस तरह, इस निगाह से देखना। अब देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निगाह, अल बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन, वो खुदा जिसने मुझे खल्क किया और जिसने मेरी हिदायत की, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जिसने मुझे खिलाया और जिसने मेरी प्यास बुझाई। देखें, वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूं तो वो मेरी शिफा करता है, वो मुझे शिफा अता फरमाता है। हम जब बीमार होते हैं फौरन जाते हैं किचन में और मेडिसिन लेते हैं और उस मेडिसिन को मुस्तकिल समझते हैं। हो सकता है आप कहें कि यार साहब ऐसा नहीं है, सही है, आप इंसाफ से बात करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इंसाफ से ही बात कर रहा हूं। इंसाफ की बात यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस में शायद ये सोचते होंगे, या कॉन्शियस में भी आप ले लें, सही है, वैसे सबकॉन्शियस ज्यादा यहां पर दखील है, हम यानी बिलीफ के अंदर शायद ये सोचते होंगे कि हाँ सही है, खुदा ही हम सबको ये दिला रहा है, खुदा ही हमें हमें खिला रहा है, वही मुसब्बिबुल अस्बाब है। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली अमली तौर पर हम जब किसी इम्तिहान में शिकार होते हैं खुदा की जानिब से, जब खुदा हमें किसी इम्तिहान में शिकार करता है, तो वहां पर जो है वो ये देखने को मिलता है कि हमारा एतिकाद जईफ है, ज्यादा कवी नहीं है। सही है, एतिकाद में ये मौजूद है कि खुदा ही हम सबको खिलाने पिलाने वाला है, लेकिन ये एतिकाद जईफ होता है। और ये जईफ एतिकाद उस वक्त सामने आता है जब किसी इम्तिहान में शुमार होते हैं, किसी इम्तिहान में हम लिए जाते हैं। और नॉर्मली प्रैक्टिकल दिनों में भी आप देखेंगे, प्रैक्टिकली हम अपने आप को अमली तौर पर अपने आप को मुस्तकिल समझते हैं, अपनी जरूरतों को मुस्तकिल देख, असबाब को मुस्तकिल देखते हैं। अब देखें हजरत मूसा अला नबीना व आलिहि व अलैहि सलाम कि ये दुआ, जब हजरत मूसा ने उस शख्स को जो है वो मुक्का मारा था और वो मर गया वहां पर, तो तमाम फिरौन का जो वो जो कारिंदे थे, वो हजरत मूसा के पीछे पड़ गए, उनकी ताकीब की। हजरत मूसा जो है वहां से फौरन भागे और निकले। और अब यहां पर तारीखी एतबार से बहुत ही जालिब वाकयात हैं, ठीक है, कि वो जाते हैं जाते हैं मुसलसल, यानी काफी, यानी कई, एक लंबा वाकया है, ठीक है, एक लंबा सफर तय करते हैं और एक दरख्त के नीचे आते हैं, देखते हैं कि साया है, ठीक है, दरख्त के अंदर, और वहां पर बैठ जाते हैं साया दरख्त के नीचे। और ये यहां पर ये इबारत फरमाते हैं, देखें सूरह कसस नंबर 78 आया रब्बे, सॉरी, हाँ सूरह कसस आया नंबर 78, नहीं सॉरी, सूरह कसस आया नंबर 24, सही है, रब्बे इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, खुदाया हर खैर और नेकी जो तू मेरी जानिब भेजता है, फकीर और नियाजमंद हूं, खुदाया मैं फकीर हूं नियाजमंद हूं। वहां पर तारीख में मिलता है कि हजरत मूसा इंतहाई हंगरी थे, भूखे थे वो। असलन उनका जिस्म लागर हो चुका था रास्ते में, असलन उनके पास गजा नहीं थी। वो तारीख में मिलता है कि वो सब्जा खाते थे, और सब्जा और पत्ते खा खा कर जो है वो उनका जिस्म, उनका चेहरे का कलर ग्रीन हो जाता था। सही है, जब वो पहुंचे दरख के साए में और बाद में जो वाकया पेश है, तो लोगों ने देखा कि इनका चेहरा जो है वो सब्ज हो चुका है। सही है, सब्जा खा खा कर। अब यहां पर हजरत मूसा ने ये नहीं कहा, खुदाया मैं बहुत भूखा हूं, मुझे दो रोटियां अता फरमा। अगरचे वो भूखे थे, उनको रोटियों की जरूरत थी, लेकिन ये नहीं कहा। क्या कहा? रब्बे इन्नी लिमा अनजलत इलैया मिन खैरिन फकीर। अपनी फकर का, अपनी पावर्टी का इजहार किया, इकरार, खुदा मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं, अपने एहतियाज का इजहार किया। जब अपने एहतियाज और फकर का इजहार किया, फिर खुदा ने जो नेमतें उन्हें फरावान अता फरमाई, वो आप देख सकते हैं तारीख में। यानी ये वो मौका था, इस दुआ के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की खिदमत उन्हें नसीब होती, नौकरी नसीब होती है वहां पर, गुलामी नसीब होती है, 10 साल तक उनकी शादी होती है, और जो माल और सरवत वो कमाते हैं इस खिदमत करने से वो बेनजीर। यानी सारी नेमतें खुदा उन्हें अता फरमाता है इस फकर के इकरार और इजहार करने की। अगर वो हद लगाते, सही है, अगर वो लिमिट सेट करते, खुदा है मुझे रोटी चाहिए, तो वो उनको रोटी ही मिलती, फिर वो आगे नेमतें जो उन्हें मिलनी थी वो नहीं मिलती। लेकिन जब फकीर होने का इजहार किया, बेपनाह नेमतें उन्हें नसीब हो गई। बस हमें भी अपनी दुआओं के अंदर अपनी हाजतों से ज्यादा अपनी अपनी फकर का जो है वो इजहार और इकरार करना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد